الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. قوم کے معماروں، داؤد یونیورسٹی کے ہو، نیا طلبہ و طالبات، ایک دفعہ پھر ایک عظیم اور مقدس و نورانی محفل بنام یوم حسین میں آپ کے درمیان کلام کرنے کی خوشی محسوس کر رہا ہوں. اور حقیقت یہی ہے کہ نوجوانوں سے گفتگو کرنا در حقیقت آسمان کی بلندیوں سے گفتگو کرنا ہے. اور یہ جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں، یہ میری زندگی کے تجربات ہیں. ایک یوتھ اینڈ فیملی کاؤنسلر ہونے کے ناطے، ایک ریلیجیس اسکالر ہونے کے ناطے، یہ یوں کہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے، میری ہمیشہ سے کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں بہت ہی سادہ گفتگو کروں. اس لیے کہ پچھلی دفعہ جب یوم علی میں آیا تھا، وزڈم ان ویو آف امام علی کے عنوان پہ جب میں نے گفتگو کی تھی، تو بعد میں کچھ شکایتیں موصول ہوئی تھیں کہ آپ نے بہت زیادہ علمی یا گہری یا سر سے گزر جانے والی گفتگو کی ہے. بہرحال کوشش کروں گا کہ آج جو ہے وہ گفتگو ویسی نہ ہو جیسی یوم علی میں تھی. نوجوانوں سے گفتگو در حقیقت زندگی کی عظمتوں سے گفتگو ہے، زندگی کی کمال سے گفتگو ہے، زندگی کی معراج سے گفتگو ہے. اس لیے کہ جوانی اللہ تعالیٰ کی ان عدیم المثال اور بے نظیر نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک خاص وقت کے لیے عطا کیا ہے، اور یہ سب الحمدللہ آپ کے پاس موجود ہے. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ہر نعمت رکنے والی نہیں ہوتی ہے، ہر نعمت کا ایک وقت ہے، اس کا ٹائم پیریڈ ہے، اور اس کا ٹائم گزر جائے گا تو وہ نعمت بھی آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی. چنانچہ جوانی کی نعمت جو آپ کے پاس ہے، جو وقت آپ کے پاس ہے، یہ جو آپ کا زمانہ طالب علمی ہے، اس کو یوں کہوں کہ یہ آپ کے پالش ہونے کا ٹائم ہے. سادی سے گفتگو میں ابھی موضوع پہ نہیں آیا ہوں، صرف چند تمہیدی گفتگو نکات جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، جب بھی کوئی کپڑا میلا ہوتا ہے نا، کثیف ہو جائے، میلا ہو جائے، تو اس کو دھویا جاتا ہے. اور جب بھی واشنگ مشین میں اس کو دھویا جاتا ہے، تو واشنگ مشین میں دو قسم کی موشن ہوتی ہیں جو اس کی مشین چل رہی ہے، ایک کلاک وائز ہوتی ہے، ایک اینٹی کلاک وائز ہوتی ہے. کپڑے کو ہمیشہ دونوں ڈائریکشنز میں، یا کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز دھویا جاتا ہے. یا عرف عام میں جب بھی آپ کے گھر میں آپ کی والدہ یا کوئی بھی انسان کپڑے کو دھوئے گا، تو وہ اس میلے حصے کو آپس میں رگڑتا ہے تاکہ وہ میل جو اس کپڑے کا ہے وہ صاف ہو جائے. ایک اور چھوٹی سی مثال میں دوں، بہت علمی مثالیں نہیں دے رہا ہوں، یہ روزمرہ کی مثالیں دے رہا ہوں جو بہت آپ آسانی سے آبزرو کر سکتے ہیں. صبح آپ نے آنا ہے یونیورسٹی، آپ کے شوز پالش نہیں ہیں، آپ اپنے شوز کو چمکانا ہے، کیا کریں گے؟ برش شوز پہ رکھ دیں گے؟ کیا آپ کے شوز پالش ہو جائیں گے؟ نہیں، بلکہ اس کو زور سے رگڑا جاتا ہے تو جب جوتے میں شائننگ پیدا ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ جو دور ہے آپ کا، یہ زمانے طالب علمی در حقیقت آپ کی اسکلز کے پالش ہونے کا دور ہے. اور اس زمانے کو جتنا آپ بہتر طریقے سے گزار سکیں گے، اتنا ہی آپ अपने आप को अपनी आने वाली जिंदगी के लिए तैयार कर सकेंगे। जिस आयत मजीदा की तिलावत का शर्फ हासिल किया वो आयतुल कुर्सी में शामिल एक बहुत ही मशहूर मारूफ आयत है। आयत के एक हिस्से में तिलावत के अल्लाह वलीउल्लदीन आमनु युखरिजुहुम मिनल ज़ुलुमाति इलन नूर, अल्लाह वली है, विलायत रखता है और उसकी विलायत का काम यह है कि वो लोगों को तारीकियों से निकाल कर नूर की तरफ ले जाता है। और जाहिर सी बात है कि अल्लाह तने तना कोई काम नहीं करता, अल्लाह ने वसीले बनाए हैं, असबाब बनाए हैं। अल्लाह अगर वही भी नाजिल करता है वो भी फरिश्ते के तवस्सुत और ज़रिए से, अल्लाह कब्ज़ रूह करता है वो भी किसी फरिश्ते के ज़रिए से, हवाएं चलती हैं उसका भी एक निज़ाम है, फरिश्ते हैं। गर्द ये कि अल्लाह इस दुनिया में मुख्तलिफ काम मुख्तलिफ ज़राए और मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए से अंजाम देता है। जो लोग कहते हैं कि वसीले की ज़रूरत नहीं है तो वो दुनिया में कोई भी चीज़ बग़ैर वसीले के दर हकीकत नहीं दिखा सकेंगे। दुनिया के निज़ाम ही वसीलों के ज़रिए से जारी व सारी है। अल्लाह वली है, वो निकालता है लोगों को तारीकियों से नूर की तरफ। खुब अगर तारीकियों से नूर की तरफ निकालता है, खुदा कह देते निकल जाओ तो आसमानी किताबों की जरूरत नहीं पड़ती, 1,24,000 अंबिया नहीं आते। ये अंबिया का आना, ये कुतुब समावी का नाजिल होना इस बात की दलील है कि अल्लाह किसी चैनल के ज़रिए से किसी मेथड के ज़रिए से एक काम को अंजाम देना चाहता है। और जब अल्लाह तारीकियों से निकाल रहा है तो फिर उसका जो रसूल है सरकार दर्जा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मिलके बाबा से बुलंद दूर भेजें। वो भी यही काम करेगा, उसके पास जो विलायत है वो भी तारीकियों से निकाल कर नूर की तरफ ले जाना है। और फिर उस रसूल का जो जानशीन है बैन ही वो भी यही काम करेगा। यही वजह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम के बारे में कि इमाम आली मुकाम ने क्यों क़याम किया, वो कौन से असबाब थे कि जिनकी वजह से इमाम को क़याम करना पड़ा। अब आप देखिए कि रसूल अल्लाह 11 हिजरी में पर्दा फरमा रहे हैं, वाकई करबला कब्र रोनमा हो रहा है तारीख में 61 हिजरी, यानी 50 साल में ये कैसा इनकलाब आया, ये कैसे हालात आए कि नवासे रसूल जिनकी अजमत जिनकी शान जिनकी फजीलत जिनका मुकाम जिनका ओहदा जिनका मर्तबा, खुद उनके वालिदैन का मर्तबा उनके भाई का मर्तबा उनके नाना का मर्तबा अदम शम्स है। यानी ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि एक मकतब या दो मकतब या एक फ़िरके हो दो फ़िरके से वाबस्ता हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत आलम इस्लाम का सरमाया है। इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा व शबाब अहले जन्ना, ये जवानान जन्नत के सरदार हैं हसन करीम हैं। इनके वालिद कसिमुन नार वल जन्ना हैं, इनके वालिदा सैयदतुन निसाइल आलमीन तमाम आलमीन की खवातीन की सरदार हैं। फिर मशहूर मारूफ हजरत उबै बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि बज़्म रसूल में बैठे हैं, इमाम हुसैन की उम्र 3 या 4 साल है, आते हैं और रसूलुल्लाह कहते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अरबों में ये तरीका नहीं है कि बच्चों को उनकी कुनियत के साथ पुकारे। कुनियत किसे कहते हैं, यानी एक शख्स जो शादीशुदा होता है उसकी जो पहली औलाद होती है उसके नाम पर उसकी कुनियत रखी जाती है। मसलन अगर किसी का पहले बेटे का नाम अहमद है तो उसे कहेंगे अबू अहमद। खुद रसूलुल्लाह को जो अबुल कासिम कहा जाता है इसलिए कि आपके एक साहबजादे थे जिनका नाम कासिम था, इसलिए रसूलुल्लाह को अबुल कासिम के नाम से भी याद किया जाता है। इमाम हुसैन अरबों में ये तरीका राइज नहीं है कि 3 साल बच्चे को उनकी कुनियत के साथ पुकारा जाए। अभी इमाम हुसैन शादी नहीं हुई, अभी औलाद नहीं हुई है, लेकिन रसूलुल्लाह आलम वही से मरबूत हैं। लोहे महफूज में देखा कि हुसैन की कुनियत अबू अब्दुल्लाह है, लिहाजा क्या किया आपने अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। हजरत उबै बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दफ़ा हैरत के आसान चेहरे से ज़ाहिर होते हैं, उसके बाद रसूल अल्लाह भांप लेते हैं कि हजरत उबैद बिन काब बहुत परेशान है कि मैंने एक बच्चे से इस तरह बाइज्जत तरीके से कलाम किया है। फिर रसूल अल्लाह फरमाते हैं उबैद बिन काब परेशान नहीं हो, मक्तूब अला यमीन अर्श, अर्श के दाएं जानिब लिखा है इन्नल हुसैना मिसबाउल हुदा व सफीनतुन निजात। ये कौन कह रहा है? ये वो रसूल कह रहा है, ये वो हस्सी कह रही है, ये वो रहमतल लिल आलमीन कह रही है कि जिसके बारे में कुरान गवाही दे रहा है वो मा यंदहु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुहा। ये अपनी जानिब से कलाम करता ही नहीं है, ये वही कलाम करता है जिसकी वही हम इस पे नाज़िल करते हैं। अब रसूल वही के ताबे होके कलाम करता है, रसूल का अपना कुछ नहीं है, वो मुकम्मल तौर पे खुदा के हैं, अल्लाह के हैं, लिहाजा उनका कलाम भी अल्लाह के लिए है, लोगों के लिए है, हिदायत है। यदि कोई भी शख्स रसूल अल्लाह के किसी फिर को लेके अमल अंजाम दे रोज़े क़यामत, वो कहेगा मैं सुन्नत रसूल के मुताबिक मैंने अमल किया, वो बरी जिम्मा। अगर साबित हो जाए कि ये सुन्नत रसूल है, वही ना आज आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो गले काट रहे हैं, बम फाड़ रहे हैं, जिंदगी से महरूम कर रहे हैं, हमारे ईसाई भाइयों को भट्टियों में जला रहे हैं, शुबे की बुनियाद पर लोगों को कत्ल किया जा रहा है, तो इन्हें रसालत के नाम पर, शुबे की बुनियाद पर, इल्ज़ाम की बुनियाद पर जो साबित नहीं है, ये भी सुन्नत रसूल होने का दावा कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि हम दीन इस्लाम के मानने वाले हैं, साबित हो जाएगा ये अमल रसूल अल्लाह ने अंजाम दिया है, लिहाजा वो सुन्नत कहलाएगा, और अगर कोई शख्स वो अमल पैरा हो, उस पर अमल पैरा हो, रोज़े क़यामत वो बरी ज़िम्मा है। अब रसूल अल्लाह वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुहा के तहत कलाम कर रहे हैं कि लौह महफूज में लिखा है, अर्श के दाएं जानिब लिखा है, क्या लिखा है, इन्नल हुसैन मिसबाउल हुदा व सफीनतुन निजात, हुसैन चिराग हिदायत है, सफीने निजात है। ये चिराग हिदायत शिया के लिए, सुन्नी के लिए, अहले हदीस के लिए, बरेली के लिए, देवबंदी के लिए, फला के लिए, मुस्लिम के लिए, गैर मुस्लिम के लिए, काफिर मुशरिक के लिए नहीं है, बल्कि ये कश्ती निजात है, इंसानियत की कश्ती है। इन्नल हुसैन मिसबाउल हुदा व सफीनतुन निजात, अल्लाह वली है जो तारीखियों से निकाल कर नूर की तरफ ले जाता है, रसूल वली है जो अल्लाह की विलायत के ताबे रहकर लोगों को तारीखियों से निकाल कर नूर की तरफ ले जा रहा है। अब जो रसूल का जानशीन है वो भी बैने ही यही काम करेगा, यही वजह है सरकार फरमा रहे हैं कि हुसैन चिराग हिदायत है। ये चिराग आप अंधेरे में लेके निकलें क्या होगा, जो चीज आपके सामने आएगी चिराग अपनी रोशनी से क्या करेगा, उसको मुनव्वर करेगा। अगर राह है तो राह दिखाएगा, चाह है तो चाह दिखाएगा, गुल आएगा तो गुल दिखाएगा, खार आएगा तो खार दिखाएगा। हो नहीं सकता है चिराग आपके पास हो, आपके सामने गुल आए और वो खार दिखाए, या खार आए और आपके सामने गुल दिखाए। चिराग का काम क्या है? चिराग का काम यह है कि वो जो चीज होती है उसकी हकीकत खोल के आपके सामने रख देता है, ले आता है। दोस्त आएगा कह के ये तुम्हारा दोस्त है, दुश्मन आएगा कह के ये तुम्हारा दुश्मन है। पर चिराग क्या है? चिराग हकीकत को वाज़े करने का नाम है, अंधेरे छाटने और रास्ते को मुनव्वर करने का नाम है। रसूल अल्लाह यही फरमा रहे हैं, इन्नल हुसैन मिसबाउल हुदा व सफीनतुन निजात, हुसैन चिराग हिदायत है। अब ये हिदायत दोस्त दुश्मन अपने बेगाने जिंदगी के किसी भी फील्ड के लिए, किसी भी फील्ड के लिए आप दबाने तालबीर में हैं, आप इमाम हुसैन से क़ुर्बत इख्तियार कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी तालिब इल्म की ज़िंदगी दुरुस्त सही या नहीं। आप अपने घर में जाइए, शराब लेके जाइए, पता चल जाएगा कि आपकी घर की ज़िंदगी दुरुस्त सही या नहीं। मिसाल के तौर पर बहुत सादी सी मिसाल, सारी यूथ बैठी है, मैं बहुत ही ऑब्जर्वेशन वाली मिसाल देता हूँ। अगर अभी रसूल अल्लाह हमारे दरमियान तशरीफ ले आए और आप में से कहें कि जितनी यूथ यहाँ बैठी है सब अपने मोबाइल मुझे दे दें, बगैर कुछ डिलीट किए हुए, बगैर कुछ डिलीट किए हुए आप अपने मोबाइल मुझे दे दें, आपके सरकारें तो जहाँ आखिरी ताजदार एमबीए आ जाए, कितने हाथ खड़े होंगे कि जो ये कहेंगे कि हम अपना मोबाइल बगैर कुछ डिलीट किए हुए खातम नबीन को देंगे। शाबाश हो, मेरा मकसद किसी की तहकीर एहानत नहीं है। वाकई अगर ये है, काश के कैमरा उस तरफ होता और पता चलता कि कितने लोग हैं जो वाकई इस मंजिल पर हैं, जो ये कह रहे हैं कि अगर दोबारा से हाथ खड़ा करें और ये कैमरा दिखा सके आपके हाथ को। अच्छा, यहाँ कोई नंबर नहीं मिल रहा है आपको, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना, फिर उधर से हाथ खड़ा कर लिया। नहीं, मेरा मकसद ये नहीं था कि हाथ कोई खड़ा करे, मेरा मकसद ये था वाकई कि हम तैयार हैं कि अपना मोबाइल, छोटी सी डिवाइस है ना इलेक्ट्रॉनिक, वो बगैर कुछ डिलीट किए हुए कोई पिक्चर, कोई ऑडियो, कोई वीडियो अपने आखिरी नबी को दे दें। अगर कोई है और तैयार है, खुश नसीब है वो। मतलब ये है कि क्या हम सुन्नत रसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं? जब हम एक मोबाइल देने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हम ज़िंदगी और ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है या बड़े बड़े दावे लब्बैक या हुसैन कैसे कह सकते हैं? तवज्जो रखिएगा, जो अपने मोबाइल को बगैर कुछ दीजिए, मसलन चलें, मतलब रसूलुल्लाह कहें तुम्हारे आ हमारे घर पर शीख हैं रसूलुल्लाह, और कहें कि तुमने जो घर में डिश लगाई है, जो चैनल देखते हो मुझे दिखा दो, कौन कौन से चैनल देखते हो? हम इसे कितने अपराध होंगे जो बहुत आसानी के से रिमोट जो है वो सरकार की खिदमत पेश कर देंगे। ये सिर्फ एक मिसाल है, एग्जाम्पल है, जो कहेंगे कि बगैर कुछ डिलीट किए हुए चैनल्स को आगे पीछे किए हुए, इसका मतलब ये कि क्या वाकई हमारी ज़िंदगी सुन्नत रसूल के मुताबिक है? अज़ीज़ा निगरानी, मेरे दोस्तों, मेरा नौजवान तालिबे इल्मों, ये वो चीज़ है कि जिसको अल्लाह कह रहा है ये तारीखियों से निकलो, नूर की तरफ आओ, नूर की तरफ आओ। एक जगह मैं मजलिस में खिताब करने गया था कुछ दिन पहले, वहाँ पर एक नौजवान मुझे मिला, और ये वाकई मैंने दो तीन जगह जिक्र किया आपकी खिदमत में बहस कर रहा हूँ। मैंने उसका नाम पूछा, मैंने बैठा में तुम्हारा नाम क्या है, उसने बताया मेरा नाम यह है। मैंने कहा इस नाम का माना तुम्हें मालूम है? उसने कहा जी हाँ, इसका नाम है मसलन, उसके नाम मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उसका माना ये था कि अली का नूर या अली के लाइट। और वो माशाल्लाह से वो पान गुटखा इस तरह की मावा क्या कहते हैं हम लोग, वो खा रहा था। तो मैंने फ़ौरन पूछा कि बेटा ये बताओ कि क्या हज़रत अली भी ये चीज़ें खाते थे? एक वो मुझे सर उठा के घूर के देखने लगा, ये क्या ही जा रहे हैं? कहेंगे नहीं। मैंने कहा फिर क्यों खा रहे हो? जब तुम्हारा नाम अली का नूर है या अली का साया है, जो भी नाम था, उसका नाम मैं नहीं ले रहा, माना बयान कर रहा हूँ, तो फिर ये काम क्यों कर रहे हो? बस वो लम्हा था जब वो तारीखियों से निकल के आया, और उसने जल्दी से जो कुछ उसकी जेब में था खाने पीने की चीज़ें वो निकाल के अपने दोस्त को दे दी, ये लो वस्सलाम नामा तमाम। मैंने कहा देखो जज्बात में फैसला नहीं करो, अभी मौलाना खुश हो जाएंगे जी, नहीं, अकल से फैसला किया है। ये क्या तारीखों से, ये छोटी सी मिसाल मैंने दी है, ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारे अपने सामने रोज़मर्रा आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, करने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। क्या हम वो कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं, क्या वाकई वो हमें तारीखियों की तरफ ले जा रही है, तारीखों से निकाल कर नूर की तरफ ले जा रही है? ये वो चीज़ है जिसको अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह तारीखों से निकालता है। कैसे निकालता है? अल्लाह हुक्म दे देता है निकाला, ये नेचर का कानून है कि मशरक से निकलेगा सूरज मगरब में डूबेगा। इंसानों को निकालना हो तो फिर ये किताबें क्यों नाजिल हुई हैं, वसीला क्यों बनाया है, अंबिया को क्यों भेजा है? तवज्जो रखिएगा, ये अल्लाह ने अपनी याद को कायम रखने के लिए, नमाज के लिए हमें उठने बैठने का, पांच वक्त की नमाज का हुक्म क्यों दिया है? एक जरिया बनाया ना नमाज, अल्लाह की याद को कायम रखने के लिए। इमाम आली मुकाम भी दर हकीकत इसी नूर को, जो रसूलुल्लाह का नूर है, जिसको रसूलुल्लाह कह गए, और शिया सुन्नी मुअर्रिखीन मुहद्दिसीन ने यह रिवायत नकल किया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं, मेरा तारुफ हुसैन से है, हुसैन का तारुफ मुझसे है। जब तक सरकार मौजूद हैं, बज़ाहिर पर्दा नहीं फरमाया आपने, हुसैन का तारुफ रसूल से है, ये मेरा नवासा है, ये मेरा सवार दोषे रिसालत है, मैं इसे मेंबर पे बैठ के बहलाऊंगा, मैं इसको रोने नहीं दूंगा, मैं इसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, ये मेरी पीठ पे सज्दे में सवार हो जाए, मैं एक जिक्र को 70 मर्तबा चूल दूंगा कि जब तक खुद हुसैन नहीं उतरेगा मेरी नमाज में जो है वो इजाफा होता रहेगा। हुसैन का तारुम हुसैन, हुसैन उम्मीनी हुसैन मुझसे है, जब तक मैं बज़ाहिर हयात हूं हुसैन मुझसे है। वह अनामिन हुसैन कैसे समझ में आएगा कि रसूल कायनात का रसूल ये कह रहा है, सरकार तो क्या कह रहे हैं कि मैं हुसैन हूं, कैसे समझ में आएगा? ये 11 हिजरी के बाद समझ में आएगा। 11 हिजरी तक हुसैन का तआरुफ रसूल के जरिए से है और 11 हिजरी के बाद का कयामत रसूल का तआरुफ हुसैन के जरिए से। और यही वजह है रसूलुल्लाह जो फरमा रहे हुसैन मिन्नी, ये मिन्नी यानी मुझसे है, वो अना मिन यानी मैं हुसैन से हूं। इसका मतलब यह है कि इमाम हुसैन और सरकार दो जहां और ताजदार अंबिया में गहरा रामदा और रिश्ता मौजूद है। ये वो विलायत का राबता है कि जो काम रसूलुल्लाह जो मिशन लेके चले थे इमाम हुसैन अलैहि सलाम उसे पाए तकमील तक पहुंचा रहे हैं। और यही वजह है कि अपने जमाने में इमाम के सामने दो किस्म के इन्हराफात, तब्दीली, बिगाड़, फसाद पैदा हुआ। इन्हराफ की दो किस्में हैं। पहली किस्म यह कि लोग खराब हो जाएं, लेकिन उससे कवानीन खराब नहीं होते। दूसरी किस्म यह कि नहीं, मैनेजमेंट खराब हो जाए, मसलन शायस्ता नहीं है मिसाल, लेकिन समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, यहां पर आपके असातिद और आपकी मैनेजमेंट और आपकी यूनिवर्सिटी के जिम्मेदार अफरादियाँ बैठे हैं। एक वक्त है कि तालिब इल्म जो है पढ़ने लिखने में अपना टाइम नहीं लगाते, यूथ मसलन पढ़ने में अपना टाइम ना दे, लेकिन कवानीन तो अपनी जगह मौजूद है ना, एग्जाम्स के, एडमिशन के, आपकी गैर निसाबी सरगर्मियों के, हर चीज़ के अपने कवानीन मौजूद हैं। यानी अगर लोग अवाम यूथ अगर ख़राब हो जाए, कवानीन अपनी जगह महफूज हैं। एक वक्त तक नहीं, मैनेजमेंट खराब हो जाए, कोई तवज्जो नहीं दे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्लास कैसे हो रही है, यहां पे ये बहुत बड़ा नुकसान होगा कि मैनेजमेंट खराब हो जाए। इमाम आली मुकाम के जमाने में लोगों में जो इन्हराफ पैदा हो रहा था वो उस नौइयत का नहीं था, बल्कि नौइयत दूसरी किस्म की थी, यानी मैनेजमेंट खराब हो गई थी। यजीद जैसा शख्स खलीफा मुस्लिमीन बन बैठा है और कह रहा है कि मैं खलीफा हूं, क्योंकि इस्लाम में बादशाहत की कोई गुंजाइश नहीं है। कुरान की कोई आयत दिखाइए, आज लोग खादिमुल हरमैन शरीफैन बने हैं, इस्लाम में बादशाहत की ताईद के लिए कोई आयत दिखाइए कुरान की। खुलफाए राशिदीन हजरत उमर, हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत मौलाए कायनात, ये उनके बाद आने वाले आइमा और खुलफा, तो वो जो रखिएगा, कोई एक आयत आपको नजर नहीं आएगी बादशाहत के लिए, शहनशाही निजाम के लिए। यजीद मोरिसी हुकूमत आ रहा है, यजीद को बिठाया जा रहा है कि तुम मेरे बाद हो, यजीद की बायत ली जा रही है, तो वो जो रखिएगा। और फिर यजीद की बायत लेने के बाद सिफारिश की गई है यजीद को, देखो 3-4 अफराद ऐसे हैं जिनसे बायत मत लेना वरना तुम्हारी हुकूमत नाबूद हो जाएगी। लेकिन यजीद एक नौजवान है जो ना तजर्बाकार है, खाम है, कच्चा है, सियासत के दाव पेश से वाकिफ नहीं है, जिस चीज को मना किया गया था अपनी हुकूमत के इब्तिदा उसी से करता है कि हुसैन इब्न अली से मैं बायत लूंगा। इमाम के जमाने में यह सूरत हाल पैदा हो रही है, बादशाही हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं है। हो सकता है कोई खिदमत कर रहा हो, लेकिन इस्लाम में बादशाही हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी आज मुसलमानों का अलमिया यह है कि अगर कल मुसलमान यजीद की मोरिसी बादशाही हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाते तो आज हमें इन अरब ममालिक की बादशाह का सामना ना करना पड़ता और ये हमारे लिए बाइस नंग ना होते। चुनाचा इमाम हुसैन कह रहे हैं मैनेजमेंट खराब हो गई है, जिसको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं शाअस्त हुसैन बादशाअस्त हुसैन। शाह और बादशाह बहुत छोटा ओहदा है इमाम के लिए, इसलिए कि हम जिस माहौल में रहते थे ना हिंद में, वहाँ पे नवाब होता था, पे राजा होता था, पे महाराजा होता था, पे बादशाह होता था, पे शहंशाह होता था, सबसे बड़ा शहंशाह आजम होता था। ये हमारे बड़े होते थे। अब किसी को कहना होता था तो कहते थे भाई नवाब साहब जिल्ले इलाही फला फला, इस किस्म के खिताबात दिए जाते थे। ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती ने देखा कि अपने माशरे में इमाम हुसैन को कैसे बड़ा कहूं, समझा ले। उन्होंने कहा शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन, बादशाह और शाह से मेरा कोई मसला नहीं है। ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती जो कह रहे हैं दी अस्त हुसैन, ये पूछे जाके कि अहले सुन्नत के अजीम मुफक्किर क्यों कह रहा है कि हुसैन दीन है, वह दीन पना अस्त हुसैन, हुसैन दीन की पनाह का नाम है। ये दीन कैसे कह दिया ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती ने, क्यों कह दिया, किस दलील की बुनियाद पे कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दीन है। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन की इस रिवायत के तहत कह रहे हैं। उबै बिन काम रजी अल्लाह ताला अन्हु की उस रिवायत मरवी रिवायत के मुताबिक कह रहे हैं हुसैन चिराग हिदायत कश्ती निजात है। दीन अस्त हुसैन और दीन पना अस्त हुसैन, सरदार नदार दरदस्त यजीद, सर दे दिया कटवा दिया झुकाया नहीं, हाथ पे हाथ रखकर बायत नहीं की यजीद की। हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन, ऐसा इंसान जो दीन हो, दीन की पनाह भी हो, दीनी रूह रखता हो, दीनी सोच रखता हो और दीन पर आंच आए तो निकल के आ जाए, सर दे दे बायत न करे, ऐसा इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे तैयबा की बुनियाद बनता है। दीन रखने वाले बहुत सारे लोग थे इमाम आली मुकाम के जमाने में, सहाबा थे, ताबईन थे, तबे ताबईन थे, और सिर्फ मदीने मक्के में नहीं थे, वाकई कर्बला में इमाम हुसैन के मद्दे मुकाबल मौजूद थे, सहाबा की औलादें थी। तवज्जो रखिएगा, ये दीन की मनमानी तफसीर, दीन का ये वर्जन के जो हम चाहेंगे वो होगा, जो हम वर्जन पेश करेंगे उसे मानना पड़ेगा, ये किसकी आइडियोलॉजी है, ये यजीद की आइडियोलॉजी है। इमाम खड़े हो गए, कहा कि नहीं हो सकता। दीनदार बहुत सारे लोग थे लेकिन दीन पना नहीं थे दीदा निगरा में। जो दीन भी हो, रूहे दीन भी रखता हो और दीन पना भी हो, वही कलमे तैयबा की बुनियाद बनता है। हक्का के बिना इला इलाहा अस्त हुसैन, ला इलाहा यानी तौहीद, ला इलाहा यानी तौहीद, यानी कायनात का सबसे ग्रैंड टॉपिक क्या है, वो तौहीद है। तौहीद से बढ़कर इस कायनात में कोई टॉपिक नहीं जिसमें डिस्कस किया जाता है। वो एक है, वो वाहदहुला शरीक है, उसने हमें पैदा किया अपनी इबादत के लिए, अंबिया भेजे, शरीयत नाज़िल की, अहकाम भेजे, हिदायत भेजी, अकल दी। लिहाजा दीनदार अफराद तो थे लेकिन दीन पनाह नहीं थे दीन ग्रामी। यहां पे इमाम आली मुकाम खड़े होते हैं। मेरी इस गुफ्तगू से जो मेरी मुराद है अपनी यूथ के लिए, अपने नौजवान दोस्तों के लिए, कि थोड़ी देर के लिए सोचें। मैं हमेशा कहता हूं, देखिए मैं शिया आलिम दीन हूं, मेरा ताल्लुक एक शिया असना अशरी मकतब से है। आप मुख्तलिफ मकाद फिक्र साल होते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। हमारे अहले सुन्नत दोस्त हैं, दियोबंदी दोस्त हैं हमारे, हम उनके साथ जाते हैं, बैठते हैं, हम उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, वो हमारे पीछे नमाज पढ़ते हैं। मोतदिल अहले सुन्नत हैं, मोतदिल दियोबंदी हैं, लेकिन कभी कोई इख्तलाफ या कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि जिसको कहा जाए कि जनाब कुछ तो कुछ शार का या तकफीर का या कत्ल गारत करने का सबब बने। मेरी जो ख्वाहिश है अपनी यूथ से, खुसूसन आप नौजवानों से, थोड़ी देर के लिए सोचें क्या वजह थी कि इमाम आली मुकाम को ये क़याम करना पड़ा। 11 हिजरी रसूलुल्लाह पर्दा फरमा रहे हैं, 12 रबीउल अव्वल माने या 28 सफर माने, 11 हिजरी सने विसाल है, 61 हिजरी में कर्बला बन रही है, वजूद में आ रही, ये 50 साल 50 ईयर्स क्या हो गया? क्या लोग नहीं जानते हुसैन कौन है? क्या लोग नहीं जानते हुसैन का बाप कासिम नार वल जन्ना है? क्या लोग नहीं जानते कि मनकुत मौला हो फहाद अलीन मौला की सदा गदीर खुम के मैदान में सुनी गई थी, हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर ने आके कहा था बख्न बख्न या अली अजबाह मौला या वो मौला कुल्ले मोमिन मोमिना, सब जानते हैं। कसिमो नारे वाल जन्ना है, हजरत अब्बास तफसील बयान करते हैं। अमीर शाम मुआविया बिन सुफयान के सामने एक दफा पहुंचे और मुआविया बिन अबी सुफयान ने कहा कि हमने सुना कि तुम तफसील बयान करते हो। कहा कि हाँ। कहता अली के फजाइल क्यों पढ़ते हो? हजरत अली की शख्सियत, अहले बैत की शख्सियत, आले मोहम्मद की शख्सियत, ये शिया सुन्नी का मसला नहीं है। हमारा माहौल ऐसा बना दिया गया है कि अगर कोई करबला जाता है तो कहते ये शिया हो गया, अगर कोई मक्का मदीना जा रहा है तो कहते ये सुन्नी हो गया, मुहर्रम आता है तो कहते ये शियों का है, रबी अव्वल आता है तो कहते ये सुन्नियों का है। हालांकि हमारी हुकूमतें भी मुहर्रम आएगा तो शियों के साथ मुज़ाकरात और ये सारी चीज़ें, रबी अव्वल आएगा तो फिर अहले सुन्नत के साथ मुज़ाकरात, सारी चीज़ें ये सब क्रिएट किया जा रहा है। वो अल्लाह कोई तफरीक नहीं है। तो मुआविया इब्न अबी सुफयान ने हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि तुम अली के फजाइल क्यों बयान करते हो? कहा कि इसलिए कि मैं जहां से कुरान खोलता हूं वहां अली के फजाइल लिखे हुए नजर आते हैं। कहा कि अच्छा कोई आयत पढ़ो। कहा अम्मा यतसालून अन नबाई अल्लज़ी हुम फीहि मुख्तलिफून, ये नबाए अजीम के बारे में सवाल कर रहे हैं। कहा कि इसमें अली कहां का? ये नबाए अजीम जिसके बारे में इख्तलाफ है लोगों का, ये इससे मुराद क्या है? इससे मुराद अली मुर्तजा। इब्न अब्बास कौन है? अजीम सहाबी हैं, मुफस्सिर कुरान है। फिर कहा कोई और आयत पढ़ो, जरूरी है पढ़ो। कहा वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफरकु, ये अहले सुन्नत की किताबों से पढ़ रहा हूं ये रिवायत। कहा कि इसमें कहां का? हबले इलाही जिसको पकड़ा हुंदे अली मुर्तजा है। अब मुख्तलिफ जो है वो आयात पेश की, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम रिज़ाल बैत, कल जिनके लिए आयत थी नाज़िल हुई अल्लाह ने पाक करने का इरादा किया है, ये कौन है? ये अहले बैत हैं, इसमें अली मुर्तज़ा शामिल हैं। कुल तआला नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। आए मुबाहला जब डायलॉग हुए थे मुसलमानों क्रिश्चियनिटी में, डायलॉग हुए थे क्रिश्चियन आए थे डायलॉग करने, तो रसूलुल्लाह को अल्लाह ने हुक्म दिया कि कहो कि तुम अपने बेटे को लाओ हम अपने बेटे को लाते हैं, तुम अपनी खवातीन को लाओ हम अपनी खवातीन को लाते हैं, तुम अपने नफ्सों को लाओ हम अपने नफ्सों को लाते हैं। तो यहाँ कौन है? कहा नफ्स रसूल कौन है? अली मुर्तजा है। कहा कि अच्छा, इब्न अब्बास कहते हैं अच्छा अमीर शाम तुम खुद कोई आए पढ़ोगे इसमें अली के फ़ज़ाइल ना हो? कहा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ ज़िलज़ालहा, सूरह ज़िलज़ाल की तलावत की। इब्न अब्बास मुस्कराने लगे। कहा मुस्करा करो। कहा कि इसमें भी अली के फजाइल हैं। अमीर शाम कहते हैं कि जनाब ज़िलज़िले की आयत में अली मुर्तज़ा का क्या काम? कहा कि तुम्हें याद नहीं है मुआविया के पहली खिलाफत के जमाने में सरकार के वेसाल के बाद एक शदीद ज़िलज़ला आया था, लोग सारा सिमटी के आलम अपने घर से निकले, खलीफा अव्वल निकले, अली के हुजरे की तरफ चले, अली मुर्तजा छोटे छोटे कदम उठाते हुए बाहर आए, बहुत इत्मीनान है अली मुर्तजा के चेहरे पर। एक टीले पे गए और जाने के बाद अपने हाथ को जमीन पर रख कहा फरमाया और उसकती ए जमीन अबू तुराब हुक्म दे रहे खामोश हो जा। रिवायत कहती है जमीन ऐसे साकित हुई जैसे एक रोता हुआ बच्चा अपनी माँ की गोद में आ जाता है। ये फजाइल, ये मनाकिब अजीजा ने गिरानी, ये जो आज आपको अमजद साबरी जैसे या दूसरे उलमाए अहले सुन्नत जैसे अफराद अहले बैत की शान में आपको कसीदा गोई या कलाम करते मिलते हैं, ये कोई नई रिवायतें पैदा हो गई हैं? ये कोई नया दीन आ गया है कि अहले सुन्नत भी अहले बैत के गुण गा रहे हैं? नहीं अजीजा ने गिरानी, मसला ये नहीं है। अहले बैत के फजाइल अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद थे, हैं, इनको छुपाया गया है एक तकफीली फिक्र को ईजाद करने के लिए, ताकि कोई सुन्नी जो है वो फजाइल अहले बैत सुनकर उनकी तरफ मुतवज्जह नहीं हो जाए। वही नहीं, सारे जो कलाम है, मनकबते हैं, फजाइल हैं, अहादीस हैं, अहले सुन्नत की किताबें मौजूद हैं। और बाज़ औक़ात मैं जब अहले सुन्नत के फजाइल उनकी जबान सुनता हूं अशश कर उठता हूं, वाकई क्या ऐसा ही है? ऐसा निगरानी इमाम आली मुकाम उस जमाने में अजहर में शम्स इमाम हुसैन की शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं है। जनाब सैयदा कायनात खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं है। रसूलुल्लाह कद पूरे कद से खड़े हो जाते हैं अपनी बेटी के इस्तकबाल करने के लिए, ये फजाइल हैं। तो इमाम हुसैन की शख्सियत भी अजहर में शम्स थी। क्या वजह है कि उस शख्सियत को कर्बला में कत्ल कर दिया जाता है और अमदन कत्ल किया जाता है? वो क्या हम असबाब तलाश कर पाए? मेरी आपसे दरख्वास्त यह है, देखिए आप में अहले सुन्नत भी हैं, अहले तशी भी हैं, यकीनन आपके दिल में डिबेट भी होती होगी। मेरी आपसे ख्वाहिश यह है कि आपस में इस तरह की जो बहसें होती हैं उन्हें उलझने के बजाय एथेंटिक बुक्स तारीख का और हिस्ट्री का मुताला करें, आपस में नहीं उलझें। ठीक है, आप अपने अकीदे पर होंगे अकीदे पर, लेकिन आपस में नहीं उलझें। इससे क्या है, कदूरतें पैदा होती हैं, नफरतें पैदा होती हैं, इससे क्या है, दूरियाँ पैदा होती हैं। इल्मी माहौल में ये बातें मुनासिब नहीं देती। आप पाकिस्तान के होनहार तालिबे इल्म हैं, यहाँ क्रीम बन रही है पाकिस्तान की, लिहाजा इनकी इनकी सलाहियतों को बिल्कुल जानिबदार होना चाहिए, गैर जानिबदार होना चाहिए, ताकि ये मुल्क मिल्लत का नाम रोशन कर सकें। वो कौन से असबाब थे जिसकी वजह से इमाम हुसैन को कत्ल किया? सब जानते हैं कि नवासे रसूल है, ये जवानान जन्नत का सरदार है। किसका? जवानान जन्नत का सरदार, उसको कत्ल किया जा रहा है। असबाब क्या थे? मैंने बताया ना, मैनेजमेंट खराब हो गई है। यजीद बड़ा जवान है तख्त पर, वो कह रहा है कि मैं खलीफा हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं सामने, कहते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता। कोई भी इंसान मोरिसी बादशाही हुकूमत के जरिए से इस्लाम पे हुक्मरानी नहीं कर सकता। तुम्हारा इंतखाब गलत है, तुम्हारे हाथ पर बायत गलत है, तुम्हारा हुक्म गलत है। जो तुम्हारे हुक्म के तहत मारा जाए वो जहन्नमी है, इसलिए कि जो गलत तरीके से लाया जाएगा दाइबा तो उसके तमाम काम गलत होंगे। अब यहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी तहरीक का आगाज करते हैं, और शऊर की तहरीक, फहमो फरासत की तहरीक का आगाज करते हैं, शऊर दिलाते हैं। किसी भी मौके पर इमाम ने मुसल्ला जद्दोजहद का रास्ता अख्तियार नहीं किया। कूफे से जो खत आए, लोगों ने कहा कि हम यजीद के जुल्म से तंग आ चुके हैं, आप तशरीफ लाइए, हम आपके आगे बैत करेंगे। इमाम आली मुकाम ने कहा कि ठीक है, अपने भाई चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम को भेजा तो जाइए, आप वहां के सियासी हालात का जायजा लें। और इधर से जब वलीद बिन अथबा ने मदीने में मदीने का जो गवर्नर है इमाम से बैत का सवाल किया, तो इमाम ने कहा ठीक है, हम कल इसका जवाब देंगे। मरवान बिन हकम ने कहा कि अगर आज हुसैन इब्न अली चले गए तो फिर दोबारा हाथ नहीं आएंगे। इमाम शऊर का रिस्क बांटने निकले हैं, फहमो फरासत और लोगों को शऊर देने निकले, और आपने मक्के की तरफ सफर शुरू किया मदीने से। 28 रजब 60 हिजरी को सफर शुरू हुआ, मक्के पहुंचे, फिर वहां से अय्याम हज में आप कूफे की तरफ चले, और कूफे की तरफ पहुंचने से पहले आपका रुख एक नामालूम वादी की तरफ, बयाबान की तरफ मोड़ दिया गया, जिसको कर्बला कहा जाता है। वहां पे आपको घेर कर और चारों तरफ से नरगाह आदा में लेके शहीद किया गया। असबाब क्या थे? असबाब ये थे कि इमाम आली मुकाम पॉलिटिक्स को, गलत राहों को, गलत इंतखाब को ललकार रहे थे, शऊर को बेदार कर रहे थे, फिक्रों को जगा रहे थे, सोए हुए ज़मीरों को ख्वाब गफलत से जगाने का काम इमाम अली मुकाम का था। अल्लाह हो वलीन आमनू, अल्लाह वली है, विलायत रखता है, तारीकियों से निकालेगा, नूर की तरफ ले जाएगा। उसका रसूल, उसकी किताब, उसका वसी, उसका जानशीन भी बैली यही काम करेगा। इमाम अली मुकाम ने शऊर दिया, बेदारी दी, आगाही दी, और यही हुआ। ऐसा ऐसा लोग बेदार हुए, और फिर यजीद का तख्ता उल्टा गया। यजीद ने जो मक्का और मदीना पर चढ़ाई की, नवाज़े रसूल को मारा, और फिर 3-4 साल के अंदर यजीद वासिल जहन्नम हुआ। ऐसा नहीं करानी, बस मेरी गुफ्तगू ख़त्म हुई, वो कि मुझे इससे ज़्यादा वक्त दिया गया था, लेकिन चूँकि बहरहाल शायद इसके बाद भी कोई सिलसिला है, बहरहाल मैं गुफ्तगू यहीं पर ख़त्म करता हूँ। ये बात याद रखिएगा कि हम जम हुसैन से क्या मैसेज ले सकते हैं। पहला मैसेज ये है कि अल्लाह के कानून को मद्देनजर रखें। मैं हमेशा कुछ ना कुछ अखलाकी नसीहतें ज़रूर करता हूँ अपने दोस्तों को। आप यहाँ आए हैं, आपकी जवानी है, ये जवानी लिमिटेड है, चंद साल के लिए है, हमेशा आपके पास नहीं होगी। इसको पढ़ने में, लिखने में, स्टडी करने में, पॉलिश करने में, स्किल्स को आला से आला सलाहियतों और अपनी सलाहियतों को एक मरहले अमल तक पहुँचाने में कोशिश करें, सर्च करें। दूसरी चीज़ ये कि आपको यम हुसैन से मैसेज मिलना चाहिए कि आप अल्लाह के कानून को, आप जिस शरीयत यानी जिस मज़हब की पैरवी करते हैं, फ़िक़्ह हनफ़ी की, मालिकी, शाफ़ी की, जाफ़री की, जिसकी भी, उससे पैरवी करें। तीसरी चीज़ ये कि बाहमी इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की फ़िज़ा को बाकी रखा जाए। हमेशा से कोशिश यही होती है और हमेशा यौम हुसैन में आई एस ओ की जानिब से शिया सुन्नी उलमा को बुलाया ही इसलिए जाता है ताकि दोनों मकातिब फ़िक्र के उलमा आकर इमाम अली मुकाम से मुतालिक गुफ्तगू कर सकें। मुमकिन है कि तासुब इतना हो गया, मैं कोई बात कहता हूँ तो मैं टीवी शो में गया, मैंने एक बात की और जो एक जनरल बात थी, चूँकि मेरा काम भी मोटिवेशनल गुफ्तगू करना है और यूथ के साथ मेरा ताल्लुक़ रहता है, तो एक कॉल आई और कहा कि बात तो आपने बड़ी अच्छी की लेकिन आप शिया हैं। तो मैंने वहीं पर उसी प्रोग्राम में लाइव था, मैंने कहा कि आपकी अकल को मेरा सलाम हो, कम से कम आपने इतना तो तस्लीम किया कि मैंने सही बात की है, लेकिन आपकी बात का दूसरा हिस्सा ये तअस्सुब की बू दे रहा है। आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, पाकिस्तान को हम कहाँ ले जा रहे हैं? आज हमारी यूनिवर्सिटी से, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा, दहशतगर्द पकड़े जा रहे हैं, हाई क्वालिफाइड अफराद को, उनके जहनों को कैप्चर किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, दाइश का आलाकार बनाया जा रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या देंगे पाकिस्तान को, आने वाली नस्लों को क्या देंगे? यही नफरतें, ये कत्ल व गारत, ये खून की बू, यही अदावत, यही खलीज? इससे बेहतर तो वो मजदूर है कि जो गड़े खोदता है और दो वक्त की रोटी के पैसे कमाता है, किसी के खिलाफ नफरत अंगेज गुफ्तगू नहीं करता, नफरत के बीज नहीं बोता। ऐसे पढ़े लिखों से बेहतर तो वो जाहिल अच्छे हैं, वो जाहिल है कि जो नफरत है तो कम से कम नहीं हो रहे ना। तो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को हमने बाकी रखना है इस फिजा को। और तीसरी चीज ये कि अपनी तालीम को थोड़ा सा सीरियस लें, ये मुल्क आपका इंतजार कर रहा है, यह कौम आपका इंतजार कर रही है। ये बाज़ाहिर किताबी बातें हैं, शायद आप में से कोई पीछे से दिल में हंस रहा हो, अरे मौलाना क्या बात कह रहे हैं आप, कौन सा पाकिस्तान, कौन से मैमार? लेकिन हकीकत है, पाकिस्तान आपका इंतज़ार कर रहा है। निकलें, खोल से निकलें। यौम हुसैन का मकसद ये कि शऊर पाएँ, यौम हुसैन का मकसद ये है कि अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ कुछ करने का अज़्म करें, कुछ तब्दील करने का अज़्म करें, कुछ चेंज लाने का अज़्म करें। वही रूटीन लाइफ जो हमारी हो गई है, सुबह उठेंगे, जाएंगे, आएंगे, खाएंगे, सो जाएंगे। यौम हुसैन चेंज करने का अज़्म है, यौम हुसैन तब्दील करने का अज़्म है, यौम हुसैन वो पहली किरण है उम्मीद की कि जो आपके दिलों में, आपके दिलों को रोशन कर रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह आप तमाम तालिबे इल्मों को इल्म के मैदान में शऊर के साथ, दीन की समझबूझ के साथ हुसूल इल्म तौफीक अता फरमाए और आपके ज़रिए से पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की इज़्ज़त, शान और सरबुलंदी में इजाफा फरमाए और हम सब मुसलमानों को इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं आप तमाम तलबा तालबात का, जिन्होंने हौसले से मेरी गुफ्तगू सुना, शुक्रमंद हूँ। उसी तरह यूनिवर्सिटी के माजत के साथ, मेरे इल्म में नहीं है कि क्या असमाए गिरामी और क्या होते हैं, बहरहाल यहाँ पर जी वक़ार शख्सियात मौजूद हैं, अगर असातीद हैं तो असातीद का एहतराम है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अहमद से इस हकीर के बयान को सुना। अल्लाह ताला आप सबकी तौफीकात में इज़ाफ़ा फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।